पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna धर्म सूतम अश्वमेधे स्थिर विभु सोपीक्षमा मनुजे रक्षण वेणे कृष्ण मनुलता। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेधे के संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तो आप सब परिचित हैं श्रीमद् भागवतम के इस वृत्तांत से, जो अभी 2 महान वैष्णवों के बीच में हो रहा है। तो भागवतम के वास्तव में एक प्रकार से ये शुरुआत है, जहां तीर्थ यात्रा में जो विदुर निकल गए तो उनका जो मिलन है उद्धव से होता है। उद्धव वो पर्सनालिटी है जिनसे कृष्ण अपना हृदय खोला करते थे। जैसे हर एक भक्त के जीवन में एक भक्त की आवश्यकता है कि जिसके पास क्या करें, हम अपने हृदय को खोल के रखें। वो भक्त का आध्यात्मिक जीवन बहुत अधिक सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सकता है जिसके जीवन में ऐसा भक्त हो जिसके पास जाकर वो चिल्ला सकता है। क्या कर सकता है? जोर जोर से चिल्ला सकता है, बोल सकता है, और जो उसका जो दूसरा डिवोटी है वो उसकी हर चीज को झेलने के लिए, समझने के लिए तत्पर रहता है। तो वैसे ही कृष्णा ने ब्रज को छोड़ दिया। एक प्रकार से आचार्यगण कहते हैं वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति। कृष्ण ब्रज भूमि को त्याग कर एक चरण अपना डालकर बाहर नहीं जाते, लेकिन फिर भी भगवान अपने वासुदेव अंश में ब्रज से बाहर जाते हैं। उनका जो मूल श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप है कृष्ण स्वयं भगवान, वो ब्रज में ही नित्य वास करते हैं। और वो अपने जो ब्रज से ब्रजवासी गण है उनको देखते हैं, उनका जो आसक्ति है कृष्ण से, कृष्ण के प्रति जो तीव्र सेवा की भावना है उसको क्या करते हैं, देखते हैं कृष्ण अपने आंखों से अपने रूप को प्रकट ना करते हुए ब्रज भूमि में। तो ऐसे कृष्ण जब मथुरा में आए, एक गांव के ग्वाले, पहली बार गांव को छोड़ा था उन्होंने, है ना। कोई गांव का व्यक्ति पहले पहले शहर में आता है तो उसको कुछ सब कुछ अचंभित कर देने वाली चीजें नजर आती हैं। तो भगवान बलराम के गले में हाथ डालकर अपने सखाओं को लेकर कहते, चलो कहां जाएंगे, हम सिटी में भ्रमण करेंगे। हाँ, मथुरा नगर में आए और मथुरा नगरी की अलग अलग चीजों को देखा और देखते देखते वहां के राजा बन गए। कृष्ण क्या बने? वहां के स्वामी बन गए। तो ऐसे जब हुआ, लेकिन ब्रज में वो एक चीज अपनी छोड़कर चले आए थे। वैसे तो कई चीजें कृष्ण ने छोड़ी थी, एक तो अपना मूल रूप ही छोड़ के आए थे, और जब कृष्ण निकले थे तो उनकी बांसुरी छीनी गई थी। बांसुरी को भगवान ब्रज से बाहर नहीं ले गए तो, और लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने अपना जो हृदय है वो ब्रजवासियों के पास, विशेष रूप से गोपिकाओं के पास छोड़कर आ गए थे। अब यहां जब मथुरा में कृष्ण वास करने लगे तो कृष्ण को सबसे अधिक विरह की अनुभूति, जो सेपरेशन है, वो किनसे हो रहा था? तो किनसे हो रहा था? ब्रजवासियों से। इसलिए ब्रजवासी, जैसे कृष्ण दुर्वासा को कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम, कि मैं एक साधु के हृदय में होता हूं और साधु मेरे हृदय में होता है। तो वास्तव में असली साधु कौन है? जो ब्रजवासी गण है। हाँ, ब्रजवासी वास्तव में असली सेंटली पर्सनालिटीज हैं। जिनके जो कृष्ण के हृदय को बांध देते हैं। तो ऐसे कृष्णा जब मथुरा में निवास करने लगे हैं तो उनको एक एक दिन काटना क्या होने लगा, भारी हो गया, क्योंकि वो किससे आसक्त हो गए थे, ब्रजवासियों से, इतना अधिक लगाव, इतना अधिक प्रेम। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेन मे। तो ये जो भक्त की भावना है, भक्त भगवान से इतना अधिक आसक्त होता है, इतनी अधिक उसकी प्रीति कृष्ण से होती है कि उसको एक एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है। और बाकी जो जगत है उसको शून्यायतम जगत सर्वम, मतलब जैसे भक्तिनो ठाकुर ने कहा नाम बिना किछु नाहिक आर 14 भुवन माझे, भगवान के अलावा, भगवान के नाम को स्वीकार करने के अलावा इस 14 भुवन या त्रिभुवन में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से भक्त जब भगवान से आसक्त होता है तो भौतिक जगत के व्यक्ति वस्तु स्थान आदि से उसका कोई लगाव नहीं होता, उसे सारी चीजें शून्य मत प्रतीत होने लगती है और वो कृष्ण के विरह में जलता है। किसके विरह में जलता है, ब्रजवासियों को हमेशा बुखार लगा रहता था, क्या था, कृष्ण ज्वर में था, कृष्ण के प्रीति में इतने अधिक वो मग्न हो गए थे कि जिसके कारण सदैव वो उनका शरीर तप्त रहा करता था। और यहां भी कृष्णा अपने जो भक्त हैं उनके वियोग में मथुरा में एक प्रकार से रोया करते थे और रोते हुए कृष्ण कहे कि किससे मैं अपना दुख बताऊं। परसों मुझे एक व्यक्ति मिलने आया था, उनकी बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है, मतलब बच्चे अमेरिका में हैं, बेटी अमेरिका में है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने जीवन में देख रहा हूं कि मेरे पास, मैं अपने जीवन में 5 लोग भी नहीं हैं जिनको मैं अपना कह सकूं और जिनके पास जाकर मैं कुछ बात कर सकूं या जिनके पास जाकर अपना हृदय क्या कर सकूं, खोल सकूं, हृदय की सारी जो भड़ास, क्या कहते हैं हिंदी में, सारी चीजें निकालो, पोर करो ना, बाहर निकालो, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तो मैंने सोचा ये हमारा क्या है, एक व्यक्ति, यही तो मॉडर्न कल्चर की दुर्दशा है। हाँ, जैसे उस दिन वो कह रहे थे ना कृष्ण प्रिया प्रभु, भक्त आपके रूम में है, उनसे बात करना, उनसे मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्णन्ति च रमन्ति च, ये करना छोड़कर हम क्या करते, जो दूर है उससे चैटिंग करते रहते, जो आपके नजदीक है उनसे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे कृष्ण कथा का आदान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम कहां कर रहे हैं आदान प्रदान, जो दूर है। यही इन मॉडर्न गैजेट्स की दुर्दशा है, क्योंकि उनमें क्या, जो रजोगुण है वो इन बिल्ट है इन मॉडर्न गैजेट्स में। तो इस प्रकार से कृष्ण के पास भी, और ये शहर में प्रॉब्लम है, कृष्ण को वृंदावन में कोई समस्या नहीं थी, गांव में ऐसे उन्हें कि अरे मेरे पास कोई है नहीं, वहां किससे बात करो, कौन मेरा क्लोज है। तो यहाँ जब शहर में गए तो सारी समस्याएं शुरू हो गई, किसके साथ, इवन भगवान कृष्ण के साथ भी। मथुरा नगरी में इतने महल में निवास करने लगे, सारा उपभोग, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुविधाओं के बीच में कृष्ण रह रहे थे, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी, उनके पास अपना कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास क्या करूं मैं, शेयर करूं। तो उन्होंने देखा, किसका हाथ पकड़ा कृष्ण ने, उद्धव का, किसका, हाँ, कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है, मतलब हम सोच नहीं सकते, यदि थोड़ा सा भी चिंतन करें डिवोटी के पोजीशन के बारे में तो हम कभी भक्तों से ईर्ष्या, द्वेष या घृणा की भावना अपने हृदय में नहीं ला सकते, केवल जो कृतज्ञता का भाव है वही सदैव हमारे हृदय से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जितना अधिक हम ग्रेटफुल होते हैं, जितना अधिक हम दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं या कृतज्ञता की भावना को हृदय हृदय में धारण करते हैं, उतना ही अधिक जॉय या ब्लिस अपने जीवन में हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ये सीक्रेट है। तो भगवान कृष्णा वहां सोचते किसको बताऊं अपने हृदय का दुख, तो किसको चूज करते हैं, उद्धव। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, वो स्वर्ग में पढ़ाई के लिए गए थे, इतने विद्वान, भगवान के मंत्री थे। कृष्ण को कुछ गाइडेंस लेनी होती थी तो कृष्ण उद्धव से चर्चा किया करते थे। इवन जब राजसूय यज्ञ के लिए भगवान को आमंत्रित किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो उद्धव ने कहा लेकिन अभी भी एक राजा खड़ूस राजा बचा हुआ है, वो अलाव नहीं करेगा, वो जरासंध है। तो भगवान कहते जरासंध कैसे हराया जाए, तो सारा योजना कौन बताते हैं, उद्धव। आप ब्राह्मण वेश में जाइए, जरासंध तो जो मांगता है वो देने के लिए तत्पर होता है। तो जितने भी जरासंध के वध की आइडिया है, योजना है, जो एक्शन प्लान है, वो इन्होंने डिजाइन किया था। किसने, उद्धव ने। तो हर चीज कृष्ण को जो भी कार्य करना होता था उद्धव से सलाह लिया करते थे। और जब उनके हृदय में ब्रजवासियों के प्रति इतना अधिक प्रगाढ़ आसक्ति या प्रेम था, तो उद्धव से कहते कि उद्धव मोहे ब्रज विसरतनाय, क्या क्या भूल नहीं पा रहा हूं मैं, वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूं। ये कृष्ण का हृदय है। तो कृष्ण का हृदय ब्रज में है, तो फिर उद्धव को वो उनका हाथ पकड़ते और बोलते, उद्धव मुझे वृंदावन भूला नहीं जा रहा है, तुम वृंदावन चले जाओ मेरा संदेश लेकर। क्या लेकर जाओ, संदेश लेकर। तो फिर हम सुनते हैं भागवतम में बहुत विशद वर्णन आता है कि उद्धव के आगमन से ब्रजवासी दिवाली और दशहरा फेस्टिवल मना रहे थे। क्या मना रहे थे, दिवाली दशहरा। इतने आनंदित हो गए उद्धव को देखने मात्र से। गोपियों ने जब प्रथम बार उद्धव को देखा, जिनका रथ नंद महाराज के महल के आगे खड़ा था, पहले तो दूर से ये गोपिकाएं रोज जाया करते थे नंद महाराज यशोदा को प्रणाम आदि करने, दूर से देखा अरे ये सेकंड आक्रोश तो नहीं आया, पार्ट टू, पहले तो आ गया था, अभी दूसरा तो नहीं आया, अभी किसको ले जाने आया है। फिर लेकिन एक युवा जब नंद महाराज के दरवाजे से बाहर निकल रहा था, जिसने पीतांबर धारण किया था, धवल वर्ण का था, और जो भी कृष्ण के समान उसकी अंग कांति वगैरह थी, जिनको देखकर गोपियों को शॉक लगा। गोपियां सोचने लगी अरे ये कौन है, कृष्ण तो नहीं है। उनकी आंखों में जैसे जब नींद से उठते हैं तो दिखाई नहीं देते, तो आंख मूंदते हैं, क्या शब्द मूंदते हैं। तो फिर जब वैसे किया गोपियों ने, तो सामने उनको दिखाई दिए, ये तो कृष्ण नहीं है लेकिन कोई कृष्ण का अनुचर है। तो फिर वो अप्रोच करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये उद्धव है। तो उद्धव कृष्ण के सर्वाधिक सर्वतम प्रिय पात्र विभूति है। ये जगत से पलायन करने से पूर्व भगवान उद्धव को अपने पास बुलाते हैं। सोचो इस अप्रकट अपनी लीलाओं को करना था, तो भगवान उद्धव को नजदीक बुलाते हैं और अपनी अंतिम शिक्षा से उद्धव को नहलाते हैं। और वो भागवतम के 11वें स्कंद में कई अध्याय में हमें प्राप्त होती है, उद्धव गीता के रूप में। तो ऐसे उद्धव जो कृष्ण भावना से पूरित थे, और जिनका मिलन किनसे हुआ था, विदुर से हुआ था। विदुर जो विशेष रूप से दूर निकल गए थे, किससे, हाँ ये दुर्योधन आदि के, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग को त्याग करके, इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा तेज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमा। चाणक्य पंडित कहते हैं दुर्जनों के संग को त्याग दो और भगवान के जो उन्नत भक्त हैं उनका एसोसिएशन करो, उनके संग की कामना करो। तो ऐसे विदुर भी तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर, अपने आप की शुद्धि का बहाना बनाकर निकल पड़े थे बाहर, ग्रह त्याग करके वनों में, तीर्थों में, नदियों में भ्रमण करते करते वो सिंसियर थे विदुर, इसलिए उनको एक सिंसियर डिवोटी मिला। द्रौपदी ने कहा भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, हम धोखा खाना चाहते तो हमें धोखा देने वाला इस जगत में प्राप्त होगा। तो विदुर जब मिलते हैं तो वो कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, विदुर कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो उद्धव है वो तत्पर हो जाते हैं। और उन्होंने पूछा कि आप भगवान के बारे में मुझे बताओ, तो सारी चीजें कृष्ण के संबंधित वर्णन करने लगे, सारी कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन किया। फिर कुछ लोग पहले उन्होंने कृष्ण की जो द्वारका लीला है, कृष्ण लीला दो भागों में है भागवत वर्णन करता है, पार्ट वन क्या है मथुरा और वृंदावन की लीला, हाँ श्रीधर स्वामी अपने भागवतम की टीका में लिखते हैं, और पार्ट टू क्या है भगवान मथुरा वासियों को उठाते हैं, द्वारका का निर्माण करते हैं, तो वो पार्ट टू कृष्ण की लीला है। तो इन दो भागों में कृष्ण लीला का डिवोटीज अध्ययन करते हैं। तो ऐसे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जब उन्होंने ब्रज लीलाओं का मथुरा की लीलाओं को किया, तो फिर अभी इन श्लोकों में जो वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं हैं उनका वर्णन उद्धव विदुर को कर रहे हैं। तो ऐसे विदुर उन लीलाओं को जो विदुर बोल रहे हैं, उद्धव बोल रहे हैं, उनको सुनते जा रहे हैं। और विशेष रूप से ये जो श्लोक है जिसमें जो उद्धव है महाराज युधिष्ठिर के विशेष एक गुण का वर्णन करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को वो कहते हैं धर्मसूतम, किसके पुत्र है ये धर्मसूतम, धर्मराज युधिष्ठिर को ये भी कहा जाता है, कई सारे नाम है युधिष्ठिर, युद्ध का मतलब है युद्ध और स्थिर का मतलब है जो स्तब्ध है या फिर स्थिर है, युद्ध में जो स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। और युधिष्ठिर की एक विशेष गुण था अजात शत्रु, उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी, कोई व्यक्ति उन्हें शत्रु माने वो अलग बात है, लेकिन एक भी जीव के प्रति उनका शत्रुता का भाव उनके हृदय में नहीं था। और धर्मराज का मतलब यही है कि जो धर्म के राजा हैं और धर्म के पालन में जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया है। इसी कारण से युधिष्ठिर की विशेषता थी कि उनका रथ जब चला करता था तो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता था, ऐसे युधिष्ठिर महाराज थे। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज का जन्म हम जानते हैं, कुंती जब अलग अलग दुर्वासा से जब वर प्राप्त करती है तो पहले उसको टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए अपने विवाह से पूर्व सूर्य को इनवाइट करती है, जिनसे उनको कर्ण की प्राप्ति होती है। और बाद में जब जो किंदम ऋषि थे जो अपनी भार्या के साथ हिरण बनकर उनका संग कर रहे थे, तो पांडव जब युद्ध के शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने हिरण समझकर अपना बाण चलाया, तो वो किंदम ऋषि थे जो अपने पत्नी के साथ संग कर रहे थे जिनमें उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के पूर्व वो उनको शाप देते हैं कि आप भी किसी स्त्री के साथ संग करोगे तो उस समय आपकी मृत्यु निश्चित है। तो माद्री का संग करते समय पांडु की मृत्यु होती है, तो उससे पूर्व ही कुंती महारानी बताती है कि मेरे मुझे ये वर प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा कुंती धर्मराज जो यम है उनका आह्वान करती है, जिनसे युधिष्ठिर उन्हें प्राप्त होते हैं, इंद्र से अर्जुन उन्हें प्राप्त होते हैं, वायुदेव से उनको भीम प्राप्त होते हैं, दो अश्विनी कुमार जो स्वर्ग के डॉक्टर्स हैं वैद्य हैं उनसे उनको नकुल और सहदेव माद्री को अपने मंत्र रिवील करती हैं, शेयर करती हैं, तो उन्हें ये पुत्र प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में शुक्रदेव गोस्वामी या उद्धव युधिष्ठिर महाराज का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं युधिष्ठिर का एक विशेष गुण है जो क्या है कृष्ण अनुव्रता। कृष्ण अनुव्रता मतलब जो कृष्ण को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कॉन्स्टेंट फॉलोअर, जो कृष्ण के कॉन्स्टेंट फॉलोअर है या कृष्ण के अनुगामी है वो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राज के प्रतिनिधि थे, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। तो पूरा ये जो तात्पर्य है, प्रभुपाद ने दो चीजों पर फोकस डाला है। एक तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि अल्टीमेटली यदि इस प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, भगवत शिक्षा का पालन करते हुए व्यक्ति फाइनली भगवान के धाम वापस जा सकता है। और दूसरी चीज प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो राजागण है वो भगवान के प्रतिनिधि है, और इसी की तो कामना कृष्ण करते हैं। कृष्ण भगवत गीता के चौथे अध्याय में वर्णन करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेनेह महता योगनस्य परंतपः। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि वास्तव में ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है, विशेष रूप से ये जो भगवत गीता की शिक्षा है, ये राजाओं के लिए है। जिन शिक्षाओं का पालन करके राजा प्रजा आदि का पालन करते थे, इसी कारण से राजाओं को देवर्षि कहा गया है। देवर्षि जैसे अलग अलग ऋषि है, देवर्षि नहीं, राजर्षि कहा गया है। हाँ, देवताओं में ऋषि है उनको देवर्षि कहते हैं। हाँ, जो ब्राह्मणों में ऋषि है वो कौन है, ब्रह्मर्षि है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऋषियों का वर्णन किया है, और भगवान राजाओं से अपेक्षा करते हैं कि वो राजर्षि होने चाहिए। राजर्षि का मतलब ये है कि जो भगवान की शिक्षाओं का अनुगमन करता है और भगवान के अनुगामी बनते हैं, भगवान के कट्टर या पक्के फॉलोअर बनते हैं। भगवान का फॉलोअर बनने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानता है और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए उस पर चलता है, वो वास्तव में भगवान का फॉलोअर है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं महाराज खचवान के बारे में, शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले भागवतम में बोलना शुरू किया तो वहां जो परीक्षित महाराज की बहुत स्तुति करते हैं कि वाह वाह परीक्षित, क्या अमेजिंग प्रश्न तुमने पूछा है, ऐसा प्रश्न जिसके जिससे क्या है सारे जगत का कल्याण होने वाला है। क्योंकि इस जगत में जो सांसारिक लोग हैं वो भौतिक चीजों के बारे में सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उनके पास भौतिक वस्तुओं के बारे में या विषयों के बारे में सुनने के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं होता। ऐसे लोग वास्तव में अंधे हैं, जो अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानते नहीं हैं। और ऐसे जो भौतिकतावादी लोग हैं, निद्रया रहते नत्तम व्यवायन चवावया, तो वो कहते हैं दिवाचारते हिया राजन कुटुंब भरणेन वा। व्यक्ति दिन में कुटुंब का भरण करने के लिए कार्य करता है, रात्रि में उपभोग करने में लगाता है, और इस प्रकार से व्यक्ति अपना जो समय है वो गवाते जाता है। तो ऐसे भौतिकतावादियों का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जीवन का परम लाभ क्या है। परम लाभ यही है, परम लाभ क्या है, जन्म लाभ परापुंसः अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का वास्तविक लाभ क्या है कि अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण होना। हाँ, तो फिर परीक्षित को और इंस्पायर करने के लिए, परीक्षित को जो परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनने का व्रत ले लिया था कि मुझे शुकदेव गोस्वामी आपके मुख से श्रीमद् भागवतम को सुनना है, और उसके लिए वो बैठ गए, तो उनको और अधिक इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सबसे पहले एक महान राजा का उदाहरण देते हैं। और ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि वो कहते हैं कि है परीक्षित महाराज एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम क्या है, खचवान। तो उन्होंने कहा कि जो डिवोटीज रूल्स रेगुलेशंस के परे हो गए हैं विधि निषेधा, ऐसे भक्त भी कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करते हैं और उनको सुनते हैं, और इन्हीं दोनों चीजों में जीवन में आनंद अनुभव करते हैं, ऐसे उन्नत लोग भी, उन्नत भक्त भी। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो खटवांग है उनके पास तुमसे भी अधिक कम समय था। जब देवता आसुरों के साथ युद्ध कर रहे थे तो उस समय देवताओं ने इनको इनवाइट किया कि हमारी ओर से आप युद्ध करिए खटवांग महाराज को। तो राजा खटवांग गए, उन्होंने इतना युद्ध आदि किया और विजय हुए। देवता भी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे उनसे। तो देवताओं ने खटवांग महाराज को पूछा कि आपको क्या वर दे, हम क्या चाहते हैं आप, क्या हम आपको अर्पित करें। तो खटवांग कोई भौतिक वर की कामना नहीं कर रहे थे। खटवांग ने कहा, मुझे एक चीज बताओ कि मेरे पास जीवित रहने के लिए कितना समय बचा है। कोई कह सकता है देवता मुझे स्वर्ग, अप्सरा, सोमरस, लंबी आयु इतना सब दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा, मुझे जीवित रहने के लिए मेरे जीवन में कितना समय बचा है। तो देवताओं ने कहा कि आपके पास केवल एक मुहूर्त बचा है। कितना मुहूर्त, एक, इतना कम समय है। तो तुरंत ही स्वर्ग के ऐश्वर्य को छोड़ते हैं, स्वर्ग के ऐश्वर्य की कामना की चिंता नहीं करते हैं, वो उसको त्याग देते हैं और पृथ्वी में आते जहां भगवत भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण है, जहां आकर कृष्ण की एकमेव शरण ग्रहण करते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं उनके नामों का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे खटवांग स्वर्ग की सुख की कामना बड़े बड़े आध्यात्मिक वाले करते हैं, कर्मकांड आदि में लोग लगते हैं। इसी कारण से परीक्षित महाराज को प्रेरित करने के लिए कि तुम्हारे पास खटवांग से भी अधिक समय है, इसलिए तुम अपने जीवन का जो मूल कार्य है, कृष्ण का फॉलोवर बनने का मतलब है, जीवन का जो मूलभूत कार्य है, मूल जो धर्म है, ड्यूटी है, उसका पालन करना। और वो क्या धर्म है, इसलिए भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति राजोक्षजे, कि जीव का एकमेव धर्म है कि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का विकास करना। और वो कैसी भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, बिना किसी हेतु के वो भगवत भजन, बिना किसी रुकावट के, जिसके द्वारा व्यक्ति सुख की अनुभूति कर सकता है। तो इस प्रकार से खटवांग महाराज ने कोई और चीज नहीं सोची, ये एक प्रकार से देखा जाए ये राजर्षि है, ये भगवान के असली प्रतिनिधि है, जिनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने खटवांग को राजर्षि कहा गया है। भागवतम में राजा मुचुकुंद का वर्णन आता है, जहां मुचुकुंद भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, इतने बड़े राजा थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं को कोई पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसके शरीर में रोमांच खड़े हो जाएगा, व्यक्ति डर जाएगा मुचुकुंद की प्रार्थनाओं को पढ़कर। भगवान काल यवन का वध करने के लिए मुचुकुंद को निमित्त बनाते हैं, निमित्त मात्रे न भव सव्यसाची, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया तो वैसे भगवान ने काल यवन को मारने के लिए उनको निमित्त बनाते हैं। मुचुकुंद एक गुफा में सो रहे थे, जब काल यवन ने आक्रमण किया मथुरा में, दूसरी ओर से जरासंध भी आ गया था, तो भगवान ने सोचा क्या करो, तो भगवान सारे शस्त्र अस्त्र छोड़कर चलने लगे तेजी से। काल यवन ने भी युद्ध के नियमों का पालन किया, उसने भी सारे शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगा, बल्कि वो दौड़ते जा रहा था। कृष्ण केवल भक्त की पकड़ में आते हैं, अभक्त की पकड़ में नहीं आ सकते। तो भगवान चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये कहते अरे रुको रुको, कृष्ण है वासुदेव, कहां भाग रहे हो मेरे भाई से। कृष्ण एक भी नहीं सुन रहे थे ना, तो चलते चलते भगवान गुफा में गए जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। वो भी देवताओं की हेल्प करके बेचारे थक गए थे, थक कर उनको क्या चाहिए था, नींद चाहिए, तो वो सो गए। और उन्होंने ये भी वर की कामना की थी कि कोई मेरे निद्रा में बाधा डालता है तो जैसे मैं अपनी आंख खोलूं वो सामने वाला व्यक्ति जलकर भस्म हो जाए। तो कृष्ण गए वहां जाकर अपना जो उत्तरिया है भगवान ऊपर उत्तरी धारण करते उसको उनके ऊपर डाला, एक कोने में गुफा के छुप गए। खाद्य बनाया तो उसने कहा अरे भारती यहाँ आकर सो रहा है, लात मारे उन्होंने, क्या मारे, लात जगाने के लिए। वैसे क्रोध में मुचुकुंद उठे, मुचुकुंद सत्ययुग या कौन से युग के प्राणी थे, सत्ययुग के डिबोटी थे और इतने लंबे चौड़े थे। पुराणों में वर्णन आया कि मुचुकुंद जब बाहर निकले थे गुफा से, उनकी हाइट कई ताड़ वृक्ष के समान थे और जब ऊपर से वो देखते थे द्वापर युग के लोग उनको इतने छोटे छोटे नजर आ रहे थे। तो भगवान ने उनको कहा था मुचुकुंद तुम यहाँ नहीं रहना, बद्री का आश्रम जाके भजन करना अपना। तो ऐसे मुचुकुंद जब सो रहे थे वो उठे, काले वन को भस्म किया तो सामने कृष्ण को देखा, फिर इन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने अपना परिचय दिया और भगवान ने कहा कि मुचुकुंद आप मुझसे कुछ मांगो, कुछ वर की मैं आशा, मैं वर प्रदान करना चाहता हूँ। तो मुचुकुंद को भगवान कहते हैं वरान वृष्णेश्वर आदर्शे सर्व कामान ददामि ते मा प्रसन्नो जनो कच्छिन् न भूयो रहति शोचितम्। तो उन्होंने कहा कि हे मुचुकुंद आप मुझसे कुछ वर मांग लो क्योंकि मैं सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हूँ, मैं जो जिस पर मैं प्रसन्न हो गया हूँ वो किसी भी चीज की कामना कर सकता है बिना किसी संदेह के। तो फिर इनकी जब बारी आई मुचुकुंद की क्या मांगो क्या मांगो, तो मुचुकुंद सबसे पहले अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। मुचुकुंद कहते हैं कि हे प्रभु इस जगत में जो स्त्री और पुरुष हैं वो आपकी जो ये दैवी माया है जिसके कारण भ्रमित हो गए हैं और ऐसे स्त्री पुरुष अपने जीवन के कल्याण को जानते नहीं है कि हमारा हित किसमें है, असली लाभ को नहीं जानते और अपनी आपकी पूजा किए बिना आपकी सेवा किए बिना जो कष्टों का मूल स्रोत है ये जो पारिवारिक मामले हैं उसमें पागल की तरह फंसे रहते हैं और उसी में बारंबार सुख की तलाश करते हैं। ये किसके पहले शब्द थे, राजा मुचुकुंद के। राजा मुचुकुंद इतने एक्सपीरियंस पर्सन थे जो इसका वर्णन करते हैं और वो कहते हैं जिस व्यक्ति का मन आपके भजन में नहीं लगता समझना चाहिए कि उसका मन बहुत अधिक अशुद्ध है और ऐसे व्यक्ति ये मूल्यवान मनुष्य देह मिलकर भी उसको पशु के पाति गमाते हैं और उनकी स्थिति कैसी है, ग्रहांध कूपम पतितो यथा पशु, जो अंध कुएं में गिरा हुआ पशु की हालत है वही हालत जो भगवत भजन नहीं करते केवल अपना जीवन पारिवारिक मामलों में फंसा के रखते हैं उसमें सुख की तलाश करते हैं वो व्यक्ति कुएं में गिरे हुए एक पशु के भांति हैं। और फिर वो अपने बारे में बोलने लगे, ऐसे नहीं था कि राजा मुचुकुंद किसी और के बारे में बोल रहा है, राजा मुचुकुंद अपनी स्थिति को भगवान के सामने रख रहा है जब कृष्ण उस गुफा में खड़े थे और वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्णा मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास धन है, मेरे पास सुंदर पत्नियां हैं रानियां हैं इतना सारा वैभव है लेकिन मैं क्या हो गया हूं, इन सब चीजों के प्रति आसक्त हो गया, मेरे संतान मेरी पत्नी मेरा खजाना मेरी भूमि और इसी के कारण इस संसार में मैं सबसे अधिक पीड़ा भोग रहा हूं और ऐसा मैं अत्यंत लोभी। तो वो कहते जो व्यक्ति अत्यंत लोभी है और जो व्यक्ति निरंतर इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है या इंद्रियों का तर्पण या भोग करने की कामना करता है वो व्यक्ति के सामने आप अचानक आ जाते हो। कैसे आते हो, अचानक आते हो उसके लाइफ में और कैसे आते हो, तो वो एक एनालॉजी देते हैं राजा मुचुकुंद। वो कहते हैं आप उस व्यक्ति के जीवन में एक काल सर्प के रूप में आते हो, जैसे कोई मुचुकुंद ने कहा एक चूहा है, चूहे के सामने सांप अचानक आ जाता है और अपने जहरीले विषैले दांत बाहर निकालकर उनको जीवा से क्या करता है, चाटता है। किसको देखकर चाटता है, चूहे को। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अत्यधिक लोभी है अत्यधिक इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है उसके सामने आप आते हैं मृत्यु के रूप में और आप उसको निगल जाते हैं और वो व्यक्ति कुछ भी आपके बारे में सोच नहीं पाता। तो मुझे अभी
रिसेंटली वो याद आ रहा था जब मैं पढ़ रहा था ये कल, हाँ ये उनका श्लोक, हाँ जैसे दिल्ली के जू में, हाँ रिसेंटली क्या हुआ था, शेर ने एक व्यक्ति को हाँ खाया, किसी ने वो वीडियो देखा तो मैं तो डर गया उसको देख के, मतलब मुझे ये सर और चूहे का जो वर्णन मुच्छकुंद ने किया वही सीन याद आया, हाँ मेरा दिमाग वहां चला गया कि जैसे वो शेर ने उस व्यक्ति के सर को पकड़ा और बहुत इजीली उसको ऐसे उठा के ले गया, तो उसी प्रकार से हम जब अत्यधिक लोभी होकर भौतिक भोगों में लिप्त होते हैं तो काल रूपी सर आता और हमें भी वैसे उठा के ले जाता है। इतनी भयावह स्थिति हमारे जीवन में है, इसलिए मुच्छकुंद आगे कहते हैं कि जो शरीर इतना मैं राजा की तरह शरीर को अलंकृत करता हूं, अलग अलग गहने आभूषण इतने महंगे महंगे वस्त्र धारण करता हूं, तो और इस शरीर को बड़े बड़े हाथियों के ऊपर रखा जाता है, जो हाथी सोने आदि से सजे होते हैं, या इस शरीर को महंगे महंगे रथों के ऊपर रखा जाता है, जिसके जो घोड़े हैं हाँ सोने आदि से अलंकृत होते हैं, ऐसा शरीर जिसको एक नाम दिया गया है राजा, क्या नाम दिया गया है राजा, लेकिन ये जब मरता है तो ये शरीर का राजा नाम नहीं रहता। सोचो हम जब किसी का नाम हमेशा पुकारते हैं, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो हम सीधा बोलने लगते हैं डेथ बॉडी, क्या बोलते हैं, उनका डेथ बॉडी आया क्या, उनका डेथ बॉडी कहाँ रखा है, नाम बोलते हैं क्या, नहीं, बहुत रेयरली सीधा चेंज हो जाता है नाम, आदि सारे भूत पे चला जाता है, भूतकाल भूल जाते हैं, सीधा एक नया नाम आता है डेथ बॉडी। उसी प्रकार से मुच्छकुंद कहते हैं मैं तो इतना वैभवशाली गौरवशाली सम्माननीय था, लेकिन ये राजा नाम से अलंकृत था, लेकिन जैसे मृत्यु हो जाती है शरीर की तो इसको भस्म कहा जाता है या फिर मल में परिवर्तित होता है, कीड़े मकोड़े इस शरीर को खा लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सामने मुच्छकुंद अपने जो आइडियल प्रार्थना है वो प्रकट कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना करते करते हाँ मुच्छकुंद भगवान को अपनी दयनीय स्थिति का वो वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं मुच्छकुंद, राजा मुच्छकुंद कहते हैं भगवान को कि निर्जित्य दिक्चक्रभूत विग्रहो वरासनस्त समराज वंदिता ग्रहेषु मैथुन्य सुखेषु योषितां क्रीड़ा मृगा पौरुष ईशनीयते। तो राजा आखिरी चीज भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्णा मैं इतना बड़ा राजा हूं कि मैं इस पृथ्वी के चारों दिशाओं को या 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है मैंने, और लड़ाई से मैं अभी अभी मुक्त होकर आ रहा हूं, और मेरे स्वागत के लिए पूरा मेरा राज्य सजा हुआ है, मैं बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान हूं, और अलग अलग लोगों के द्वारा मेरी स्तुति की जा रही थी, स्तुति की जा रही है, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में सब लोग गा रहे हैं गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं लेकिन एक कड़वाहट की बात मैं आपको बताता हूं कि मैं वास्तव में एक पशु के भांति हूं। कहते कि इतना सम्मान, इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैंने अचीव की है, इतनी सब चीजें होने के बाद जब मैं अपने महल के अंतपुर में प्रवेश करता हूं जहां मेरी रानियां हैं, जिनके पास मैं उनके संग की कामना करता हूं, स्त्रियों का संग करने के लिए मुझे क्या करना होता है, उनके तलवे चाटने पड़ते हैं, इसलिए हे कृष्ण मैं कुत्ते के भांति हूं, ये मेरी असलियत है। कौन कह रहे हैं, राजा मुच्छकुंद कह रहे कि इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने किया है लेकिन भौतिक सुख के लिए मुझे एक कुत्ता बनना पड़ता है, जिसके कारण मैं आपको भूल जाता हूं। तो फिर भगवान कहते हैं अरे मुच्छकुंद मांगो, कब तक प्रार्थना करते रहोगे, आपकी प्रार्थनाओं तो बड़ी हृदय को द्रवित करने वाली है। तो फिर वो एक प्रार्थना करते हैं जिसमें सर्वोच्च चीज वो मांगते हैं, क्या मांगते हैं, तो यहां सुखदेव गोस्वामी उनकी इस प्रार्थना का वर्णन करते हुए कहते हैं न कामयेन्योम तव पाद सेवनाद अकिंचन प्रार्थ्य मदाद्वरं विभो आराध्यतस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे व्रणीत आर्यो वरमात्म बंधन। तो मच्छुकुंद कहते कि हे कृष्णा, न कामये अन्यम तव पाद सेवना, मुझे आपके चरणों की सेवा के अलावा दूसरी कामना नहीं है। यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने कही, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो यहाँ मुचुकुंद कहते हैं न कामये अन्य तव पाद सेवना अकिंचन प्रार्थितमा वरं विभो, कि हे प्रभु आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा मैं कोई कामना नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जिन भक्तों के हृदय में भौतिक इच्छाएं बिल्कुल नहीं है वो आपकी सेवा के अलावा दूसरी कामना नहीं करते। इस प्रकार से एक भक्त का हृदय होता है, क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो आप मुक्ति देने वाले हो, आपकी पूजा करके आपकी सेवा के अलावा दूसरा वर प्राप्त करना ये बहुत बड़ी क्या है, मूर्खता है। तो जब भगवान ने उनकी इस प्रार्थना को सुना, इस कामना को सुना, तो कृष्ण ने कहा मैं तो तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था, मैं तुम्हें वर प्राप्त करो ये कहकर तुम्हें चेक करना चाह रहा था, प्रलोभित करना चाह रहा था कि तुम मेरी सेवा के अलावा कुछ मांग सकते हो। लेकिन मैं समझ गया कि हे मुचुकुंद, तुम अपने भक्ति में क्या हो, अत्यधिक दृढ़ हो, तुम मेरी सेवा के अलावा किसी चीज की कामना नहीं करते हो। क्योंकि मेरे जो भक्त हैं जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर है वो मेरी सेवा के अलावा दूसरी कामना नहीं करते, और जो कामना करते हैं मेरी सेवा के अलावा वो वास्तव में अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में इल्यूजन में है। तो इस प्रकार से भगवान उनकी स्तुति करते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि राजर्षि का मतलब है कि जो भगवान की सेवा में क्या है, दृढ़ है, भगवान का फॉलोवर। कृष्णानु गमनम जो यहाँ आया है तो उसका मतलब यही है कि जो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान की सेवा की सदैव कामना करता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानता है। तो ऐसे नहीं कि आदर्श राजा केवल यही हुए हैं, राजा का मतलब है लीडर। तो हम भी किसी ना किसी के लीडर हैं, हम भी अपने घर के क्या है, राजा है, अपने एरिया के राजा है, अपने एरिया के लीडर है। तो हमें भी ये जो मुचुकुंद की जो मनोवृत्ति है, उनकी जो ये भावना है भगवान के प्रति, इस भावना को हमें सीखना होगा और अपने हृदय में आचरण में धारण करना होगा। इसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी भागवतम के चौथे स्कंद में एक आइडियल सेंटली किंग का वर्णन करते हैं, ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज के क्वालिटीज का वर्णन करते हुए एक राजर्षि कौन होता है, क्या राजर्षि के गुण है, उनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ध्रुव महाराज का वर्णन करते हुए, तमेव शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दिन वत्सलम गोप्तारम धर्म सेतुनाम मेनिरे पितरम प्रजा। तो यहाँ उनके चार क्वालिटीज का वर्णन करते हैं, राजर्षि कौन है, सेंटली किंग कौन है। तो सबसे पहले वो कहते हैं राजर्षि का पहला गुण है कि जो ब्राह्मण्यम, ब्राह्मण्यम का मतलब है कि जो भगवान के भक्तों के प्रति रिस्पेक्टफुल होता है। क्या होता है, रिस्पेक्टफुल, भगवान के भक्तों के प्रति आदर की भावना उसके हृदय में होती है, श्रद्धालु होता है। तो रिस्पेक्ट किसी को हम दे रहे हैं, रिस्पेक्ट करने का असली मतलब क्या है, उसकी आज्ञा का पालन करना। ऐसे नहीं कि प्रणाम करना मीन्स रिस्पेक्ट देना, नहीं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना ये असली रिस्पेक्ट है। गुरु का आदर आदि करने का मतलब है कि जो डिसाइपल है वो गुरु के जो आदेश है, उनकी आज्ञा है, उसके प्रति अत्यधिक रिस्पेक्टफुल होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं,
प्रभुपाद तो अपने आध्यात्मिक गुरु को 12 बार ही मिले थे, उससे अधिक नहीं मिल पाए, लेकिन वो कितने अत्यधिक रिस्पेक्टफुल थे अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति, उनके आदेशों का पालन करने के प्रति। और यही एक चीज वास्तव में हमें सफलता प्रदान करती है। तो राजा का पहला गुण है कि वो भक्तों के प्रति रिस्पेक्टफुल होता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करके वो अपने राज कार्य का निर्वाह करता है। जैसे हम देखते हैं राजा प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र के बारे में चैतन्य चरितामृत में अत्यधिक वर्णन हमें प्राप्त होता है, जहां राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को छोड़कर चले जाते थे तो प्रताप रुद्र रोया करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके गुरु थे उनको कहते थे, आपने रोका क्यों नहीं, ये महापुरुष हमारे स्थान से चला जाए ये मेरे लिए असहनीय है, और जिनका संग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, जिनका दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा राजपाट धन वैभव ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र की ये भावना थी। तो राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, आपने आचार्य भक्ति सिखाएं सवारे। चैतन्य महाप्रभु जो जिस आश्रम में रहे उस आश्रम से अपने उस आश्रम की शिक्षाओं को वो देते थे। जैसे वर्णन आता है नवदीप में, वो गृहस्थ आश्रम में थे तो रास्ते से चलते थे, गृहस्थ है रास्ते से चलते थे तो भी एक ओर एक ओर से चलते थे और अपनी आंखें ऊपर करके नहीं चलते थे। यदि कोई सामने से स्त्री भी आ जाए वो अपने गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी आंखें ऊपर करके भी नहीं चला करते थे, तो फिर संन्यास आश्रम में क्या कहा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी थे और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहता है, पहले तो इनको डर लग रहा था सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मेरे ने एक बात करना चाहता हूं आपसे, तो कहते कहो कहो, तो कहते आपको बुरा लग सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं बताओ। तो उन्होंने कहा राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा राजा यह असंभव है। हाँ, राजा शब्द किसका सूची सूचक है, विषयी भोगों का सूचक है, इसलिए मैं राजा से नहीं मिलना चाहूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, संदर्शनम अथा योषिताम च, तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो अध्यात्म में उन्नति करना चाहता है, वो व्यक्ति यदि जानबूझ के ऐश्वर्यवान व्यक्तियों का संग करता है तो उसके हृदय में भी विषय भोग करने की जो कामना है वो जागृत हो जाती है, और जानबूझकर जो अध्यात्मवादी व्यक्ति बारंबार स्त्रियों को देखता है तो भी वो जानबूझ के क्या कर रहा है, विष का पान कर रहा है। ऐसी कठोर कठोर बातें पूरे चैतन्य चरितामृत के एक अध्याय में वर्णित है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा फिर से मुझे कहोगे कि आप मुझे मिलो, राजा को मिलो, तो आप मुझे जगन्नाथपुरी में कभी भी नहीं देखोगे, परमानेंटली स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य दुखी होते हैं, घर में आते हैं, फिर राजा अपने सारे मंत्रियों के साथ जब आया जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए राजा जा रहा था और उनके साथ रामानंद राय थे। जब उनके साथ रामानंद राय भी जा रहे थे तो रामानंद राय राजा के साथ जगन्नाथ टेंपल की ओर जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने राजा को छोड़ दिया और यू टर्न लिया। यू टर्न कहाँ लिया, गंभीरा की ओर, चैतन्य महाप्रभु जहां निवास कर रहे थे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कुछ श्लोकों में, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। राय प्रणति कैल प्रभु कैल अलिंगान दुई जने प्रेम वेशे करे नक्रंदन। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए रामानंद राय आते हैं, रामानंद राय उनको प्रणाम करते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करके चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय रोने लगते हैं। तो रामानंद राय जो गवर्नर थे मद्रास के, जिनका ये व्यवहार और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, ये देखकर सारे जो गंभीरा में भक्त थे वो अचंभित हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय कहते हैं कि आप जब आए थे वहां मद्रास की ओर या गोदावरी किनारे विद्यानगर जब आप आए थे और आपने मुझे आदेश दिया था कि ये सारा राजपाट छोड़ दो और सारी चीजों को त्याग करके जगन्नाथपुरी में मेरे साथ रहो और हाँ बचा हुआ जीवन क्या करेंगे, कृष्ण कथा में हाँ बिताएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इस बात को रामानंद राय ने राजा प्रताप रुद्र को कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सब चीजों का त्याग करो और उनके संग में जगन्नाथपुरी में निवास करो। ये जब राजा को बोला, राजा आनंदित हो गया, राजा को ईर्ष्या नहीं हुई कि अरे देखो मुझे वो महाप्रभु मिलना नहीं चाहते हैं, ये इसको मिलना चाहते हैं और ये मेरा सर्वंट है, इसको मैं अलाव नहीं करूंगा, बल्कि राजा आनंदित हुआ। तो भक्त का ये गुण होता है, जब दूसरे भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है हाँ, तो दूसरा भक्त आनंदित हो जाता है, उस भक्त को देखकर दुखी नहीं होता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं रखता। तो राजा प्रताप रुद्र आनंदित हुए, उन्होंने कहा तुम नौकरी छोड़ दो लेकिन तुम्हारी डबल सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी, किसके साथ रहो, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहो। तो ये देश सुनकर चैतन्य महाप्रभु आनंदित होते हैं कि सही में राजा प्रताप रुद्र ने ऐसे कहा। तो रामानंद राय ने कहा कि हाँ, तो फिर एक महत्वपूर्ण चीज चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोली, उन्होंने कहा राजा प्रताप रुद्र के ऊपर कृष्ण कृपा कर सकते हैं। क्यों, क्या कारण है, क्यों राजा प्रताप रुद्र के ऊपर कृष्ण अपनी आयतों की कृपा कर सकते हैं? तो वो कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भगत प्रधान, तोमा के जे प्रीति करे सही भाग्यवान। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि हे रामानंद राय, आप कृष्ण के सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, अग्रणी हो, प्रमुख हो, प्रधान हो, और जो आपसे प्रेम करता है निश्चित रूप से वो भी अत्यंत भाग्यशाली है। इसी कारण से तो माते जे तप्रति हैल राजार, यही गुने कृष्ण तारे करीब अंगीकार। तो उन्होंने कहा कि राजा की प्रीति आपसे है, इसी गुण के कारण कृष्ण भी राजा को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि कृष्ण का गुण है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो कृष्ण का प्रिय डिवोटी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब इतने अधिक रिस्पेक्टफुल थे या उनके आदेशों का पालन करने के लिए राजा प्रताप रुद्र तत्पर थे, जिसके कारण से चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक योजना बताई चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिल सकते हो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जब रथ जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा मंदिर की ओर जाता है तो बीच में एक बलगंडी नाम का स्थान आता है जहां रथ रुकता है और सारे पुरी वासी जगन्नाथ को अपने अपने स्थान में खड़े होकर भोग लगाते हैं। उस समय भगवान चैतन्य पूरे समय कीर्तन करते करते थके होते हैं और अपने भक्तों के संग में एक वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा विश्राम करते हैं। उस समय तुम जाकर चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करो, लेकिन एक क्या करना होगा, आपके जो राजवेश है उसको त्याग दो और वैष्णव ड्रेस धारण करो। कौन सा ड्रेस, हाँ तो वैष्णव वेशभूषा हमें धारण करनी चाहिए जब हम टेम्पल आते, कम से कम सैटरडे संडे या फेस्टिवल में, तो उससे कृष्ण हमारे प्रति अनुकूल हो जाते हैं। तो जब सर्वम भट्टाचार्य ने राजा से कहा तो राजा ने अपना राजवेश छोड़ा और धोती कुर्ता धारण किया, गले में बेड बैग लटकाए, जब क्या करते थे। फिर जब महाप्रभु थक गए थे कीर्तन करते करते, एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और एक और चीज भी कही थी राजा को, क्या कि जब महाप्रभु वहां लेटे होंगे तो उनके चरणों का मसाज करते करते क्या करो, भागवतम के जो रास पंचाध्याय है, विशेष रूप से जो गोपी गीत है, उसका जोर से उच्चारण करो, श्लोकों का उच्चारण करो। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का आदेश लेकर राजा उस स्थान में जाते हैं। बाकी डिवोटीज अलग अलग वृक्षों के नीचे थे, चैतन्य महाप्रभु अकेले वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और सदैव कृष्ण 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 कह रहे थे। तो राजा प्रतापपुत्र जाते हैं तो सारे डिवोटीज उनको देखते हैं, अरे राजा प्रतापपुत्र वैष्णव वेश में आए हैं और सारे उनको हरि बोल कहते हुए आशीर्वाद देते हैं। राजा प्रतापपुत्र सारे वैष्णव के चरण की धूलि में गिरते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसाद। तो जब गए तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना हाथ रखा और गोपी गीत के जो श्लोकास हैं उनका उच्चारण करने लगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरणितम कल्प शापहम। तो इस प्रकार से वो बोलते जा रहे थे और उस श्लोक के अंत में उन्होंने बोला भूरिदा जना। हाँ, तो इस श्लोक ये जो शब्द बोला भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना का मतलब है कि सबसे बड़े दानी है वो डिवोटीज जो कृष्ण कथा दूसरों को देते हैं, क्योंकि सारे लोग इस संसार के तापों से पीड़ित हैं। तो इन तापों से मुक्त होने के लिए परम औषधि क्या है? तब कथा मृतम, हाँ कृष्ण कथा। तो जैसे महाप्रभु ने ये श्लोक सुना राजा प्रताप रुद्र के मुख से तो चैतन्य महाप्रभु उठ गए, उठ के राजा का आलिंगन करने लगे। जो राजा से मिलना नहीं चाह रहे थे, जो राजा का मुख भी नहीं देखना चाह रहे थे, राजा शब्द भी सुनना नहीं चाह रहे थे, वही राजा चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु उस राजा का आलिंगन करते हैं और कहते कि तुमने बहुत बड़ा मेरा कल्याण किया है, तुम क्या करो और वर्णन करते जाओ और सुनाते जाओ। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और राजा उस स्थान से वापस आते हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये प्रताप रुद्र का गुण है, भक्तों के प्रति पूर्ण रूप में समर्पण या रिस्पेक्ट की भावना थी उनके आदेशों का पालन करने के लिए, जिसके कारण वो भगवान के प्रिय बने। और शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि दूसरा गुण क्या है राजा का, कि वो जो गरीब और जो इनोसेंट लोग हैं उनके प्रति जो राजा है वो दयालु होता है। हम शिवी महाराज शिवी के बारे में सुनते हैं या फिर भगीरथ के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने सारे जीवों के कल्याण के लिए स्वर्ग से क्या लाए थे, गंगा अवतरित करवाई थी। तो इस प्रकार की क्वालिटी का वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी करते हैं। और तीसरा गुण वो कहते हैं कि जो राजा है, राजर्षि है, वो धर्म की रक्षा करने वाला होता है। तो ये सारे क्वालिटीज हम देखेंगे परीक्षित महाराज को लागू होते हैं। इसलिए इन राजाओं का जहां भी नाम आया है भागवत में, शुकदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी या स्वयं कृष्ण, इन राजाओं को इस टाइटल से पुकारते हैं। क्या? राजर्षि। मुचुकुंद से जब बात कर रहे थे कृष्ण, उनको भी क्या बोल रहे थे? राजर्षि। हे मुचुकुंद तुम राजर्षि हो। और फिर वो अपने राजर्षि होने का एक प्रकार से अपने प्रार्थनाओं के द्वारा उसको स्थापित करते हैं। और ये तीन गुण होने के कारण जो राजा के अंदर चौथा गुण आ जाता है, क्या है वो? कि वो अपनी प्रजा का पालन अपने पिता के समान करता है। तो शुरुआत कहां से होती है? भक्तों के प्रति रेस्पेक्टफुल की भावना, उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर। और दूसरा जो सर्वसाधारण लोग गरीब और इनोसेंट मासूम है उनके प्रति दया की भाव और धर्म की रक्षा करने की भावना, रक्षा करने वाला। जैसे परीक्षित महाराज ने कलिंग को दंडित करके धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया, धर्म के जो चार स्तंभ हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी या उद्धव युधिष्ठिर महाराज को राजर्षि कह रहे हैं। और उनका जो प्रमुख गुण है कि कृष्ण के सबसे बड़े क्या है? फॉलोवर है। पांडवों का जीवन इसीलिए था, जब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण ने कहा मुझसे कुछ मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा? मुझे सुंदर पत्नी चाहिए और सबसे अधिक ऐश्वर्य चाहिए। कोई कह सकता है युधिष्ठिर क्या हो गए, दो चीजें मांग रहे हो? युधिष्ठिर ने किसकी सेवा के लिए मांगा था? ये कृष्ण की सेवा। राजस्वी यज्ञ किया अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की महिमा को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए। अग्र पूजा के अधिकारी किसे बनाया उन्होंने?
कृष्ण को बनाया। तो ऐसा पांडवों का जीवन विशेष रूप से कृष्ण के इर्द गिर्द था। युधिष्ठिर महाराज को कोई राजा बनने की कामना नहीं थी, लेकिन किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो सिंहासन पर बैठे थे? कृष्ण की। कृष्ण चाहते थे, कृष्ण ने युद्ध करवाया केवल युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए, क्योंकि वो राजर्षि है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव करोचना। तो जब ऐसे महान राजा आचरण करेंगे भगवत भक्ति का, तो प्रजा भी स्वाभाविक रूप से उसका अनुगमन कर सकती है। इसलिए उद्धव युधिष्ठिर महाराज को सबसे बड़े कृष्ण के फॉलोअर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कृष्ण भावना सब जगह लागू की। और युधिष्ठिर शांत नहीं रहते थे, बारंबार नारद को पूछा करते थे कि कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी द्वारका में, या फिर अपने जो भाई अर्जुन है उनको बारंबार भेजते थे द्वारका, आप चेक करके आओ कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब कृष्ण अप्रकट हुए तो युधिष्ठिर ने भी इस संसार से, जैसे उनको न्यूज मिली कृष्ण अप्रकट हुए हैं, तुरंत अपने राज वस्त्रों का त्याग किया, अपने बालों को खोल दिया, सरल वस्त्र धारण किए, हाथ में डंडा लेकर हिमालयास की ओर चलने लगे। शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेन। तो ऐसी उन्नत भावना इन महान महान राजाओं के बीच में है। तो भागवत में अधिकतर राजाओं का वर्णन है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के नित्य अनुगामी है, कृष्ण के महान भक्त है। इस प्रकार से उद्धव उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, किनके? युधिष्ठिर महाराज की। एक भक्त आनंदित होता है जब उसको मौका मिलता है दूसरे भक्त के प्रशंसा करने के। जब हमें हिचकिचाहट होती है, कुछ द्वेष घृणा की भावना है, तो हमें समझना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन दुखमय भयावह स्थिति में है। तो उद्धव शांत नहीं बैठे, बोलते जा रहे थे युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।